ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आज अध्याय एक का श्लोक संख्या जो है वो 39 है। पहला अध्याय 39वां श्लोक। पिछली बार हमने पहले अध्याय का पहला श्लोक लिया था, है ना। तो ये जो है सब जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको ले रहे हैं। तो सीधा हम धर्मेश सीधा जो है आज 39 श्लोक लेंगे। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत। अधर्म अभिभवति उतः कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः। जे इंग्लिश में देखिए इसमें लिखा हुआ कहां तक है वो, ये धर्मे नष्टे कुलम कृतसन है ना। धर्मे नष्टे कुलम कृत्सान अधर्मो अभिभवित्युत कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सान अधर्म अभिभवति उतः। इसका अनुवाद है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य सुनिए, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वे वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। मंगलाचरण करेंगे, पहला नंबर पेज निकाल सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सागरजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विश्वदाय कृष्ण सहमत गोपाल कृष्ण प्रभुपाद तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो श्लोक है, कौन बोल रहे हैं? ये अर्जुन, वेरी गुड। ये श्लोक जो है अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन जो है, आप जानते हैं कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जो उनका रथ हांक रहे थे, कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो भगवान जो है उनकी आज्ञा अनुसार रथ को बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। तो जब अर्जुन ने देखा कि जो दूसरे दल में, शत्रु दल में जो लोग हैं, वो तो सब अपने ही हैं, अपने हैं, चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई गुरु है, सब अपने ही लोग वहां खड़े हैं सामने। तो ये देखकर जो है वो विचलित हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को कहना शुरू किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके कारण बताए, युद्ध ना करने के क्या कारण है। उनमें से एक कारण ये भी है, ये भी एक कारण बता रहे हैं। क्या कारण है? ये कारण है, कुल का नाश होने पर, सारे कुल का नाश हो जाएगा। हे भगवान, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो कुल परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और कुल परंपरा को प्रभुपाद जी जैसे समझा रहे हैं तात्पर्य में, कि कुल परंपरा को जीवित रखने के लिए वयोवृद्ध, वृद्ध लोग होने चाहिए। आज जो है समाज इतना ज्यादा जो है वो अज्ञानता की तरफ जा रहा है, इतना ज्यादा जो है वो भौतिकवाद की तरफ जा रहा है, जो लोभ के कारण, ग्रीडीनेस के कारण क्या है, चेतना का ह्रास हो जाता है। तो इसीलिए लोग जो हैं, कोई बातें कर रहे हैं बीच में, कोई बातें कोई खास है तो हमें, हमारे से शेयर करो। ऊपर ऊपर नहीं, बातें नहीं करिए, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिए। आप बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान सब जगह से हटा के यहाँ पे रखिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। आप जो सब हो, सब लीडर हो, आपको सबको ये बातें समझानी है दुनिया को जाके, क्योंकि दुनिया जो है भटक रही है। आप ध्यान से सुनिए। तो लोभ के कारण जो है ना, चेतना का हास हो गया। देखिए दुर्योधन, दुर्योधन वही है आजकल जो है, सब लोग जो है दुर्योधन की पार्टी के में है, मेजोरिटी जो है दुर्योधन की पार्टी के हैं लोग। हाँ, लोभ के कारण जो कुल परंपराएं हैं उनका उनका कोई उनका उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति वयोवृद्ध हो गया है, ओल्ड हो गया है, उनको क्या करते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। आजकल ओल्ड एज होम बन गए हैं, घर से निकाल के उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। वो जानते नहीं है कि वयोवृद्ध का घर में होना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे एक बार एक राजा के बच्चों ने बंदर पाले हुए थे, राजमहल में बंदर पाले हुए थे, उनको खूब अच्छा खाने को मिलता था, बादाम पिस्ता फल कोई कमी ही नहीं थी, मतलब कुछ करना नहीं है, बस सब चीजें उनको मिलती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा की जो रसोई थी उसमें एक भेड़ घुस गई और भेड़ ने कुछ सामान चुरा लिया और वो चली गई। ये बात सारे राजमहल में फैल गई कि रसोई में भेड़ घुस गई, उसने सामान खा लिया वहां रसोई का। जब ये बात सुनते सुनते बंदरों के पास पहुंची और बंदरों में जो वयोवृद्ध थे, जो सबसे बूढ़े बंदर थे, उनके पास पहुंची, उसी वक्त उन्होंने कहा इसी समय आप ये राजमहल छोड़ दो, नहीं तो आप सबका नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। सारे सारे जो जवान बंदर थे, बंदरियां भी थी, सब थे, सारा कुल था, वो हंसने लग गए, कहते हैं ये सठी आ गया है, बूढ़ा बूढ़ा सठी आ गया है। वो भेड़ ने रसोई में कुछ खाना खाया, इससे हमें क्या लेना देना। हमें कह रहे हैं कि घर राजमहल छोड़ के जंगलों में जाएं, वहां कुछ मिलना नहीं है, वहां पे जंगलों में हम भूखे मरेंगे, और यहां हमारे राजकुमार जो है, ये राजकुमारियां हमारी कितना प्यार करती हैं, हमें कितना ध्यान से रखते हैं, कोई चीज की हमें कमी नहीं होने देती। सर्दियां हो तो हमारे लिए रजाइयां टांग दी जाती हैं पेड़ों पे, गर्मियों में कितने अच्छे अच्छे पेड़, छायादार पेड़ हमें दिए जाते हैं, कोई कमी नहीं है यहां पे। ये वयोवृद्ध जो है, ये बूढ़ा बंदर जो है, इसको जाने तो जाते, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो उसने कहा देखो मैं तो जा रहा हूं अब भी, लेकिन तुम्हें बताता जा रहा हूं कि क्या होगा, सुन लो अभी क्या होगा। ये भेड़ को आदत पड़ गई है, भेड़ दोबारा जाएगी रसोई में, और रसोई में जब जाएगी तो अब जो रसोईया है इसको जलती हुई लकड़ से मारेगा, जलती हुई लकड़ी से, और लकड़ी से मारेगा जलती हुई तो इसको आग लग जाएगी। ये आग बुझाने के लिए भेड़ सीधी घोड़ों के अस्तबल में जाएगी, और वहां जो घास है उसको आग लगेगी, उससे घोड़े भी जल जाएंगे। और जब वैद्य आएगा और उससे पूछा जाएगा कि घोड़ों का क्या इलाज है, जल गए हैं घोड़े, तो बताएगा देखो महाराज, घोड़ों के जो जल गए हैं उनका घावों को भरने के लिए ये बंदरों की चर्बी चाहिए हमें, बंदरों की चर्बी मिलेगी तो उससे इलाज होगा इसका। तो राजा एकदम ऑर्डर देगा कि इन बंदरों को मार दिया जाए। राजा के लिए घोड़े जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारी कोई महत्ता नहीं है घोड़ों के आगे। सब हंसने लगे, कहते क्या लंबी फेंकी इसने भी बूढ़े ने, कहा कड़ी जोड़ रहा है, बूढ़ा हो गया, बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया ये। वो भेड़ जाएगी, वो घोड़ों के उस्तबल में जाएगी, इसको जैसे सब कुछ पता है, कोई नहीं सुनता, उसका मजाक उड़ाते, वो तो चला जाता है उसी दिन। और जैसे उसने बोला था एग्जैक्टली वही बात होती है, एग्जैक्टली वो भीड़ आती है दोबारा, तो रसोईया जो है लकड़ी से, जलती हुई लकड़ी से उसको मारता है, तो वो जलती है, वो जलती हुई भागती है अपने आप को जलने से बचाने के लिए, वो सूखी जगह पे भागती है ना, वो भागती है सीधा अस्तबल में, उसको पता है अस्तबल में घास है, घास में घुस जाती है, घास आग पकड़ लेती है, सारे घोड़े जल जाते हैं। वैद्य को बताया जाता है, वैद्य जी कैसे इलाज किया जाए? वैद्य जी कहते हैं कि इसका तो एक ही इलाज है, हमें बंदरों की चर्बी चाहिए। राजा कहते हैं बंदरों की चर्बी? ओ कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो बड़े बंदर हैं, मार दो सबको, मर जाते हैं सारे के सारे बंदर, कोई चारा ही नहीं था। यही हाल है जब हम ओल्ड एज होम में डाल के आते हैं अपने बड़े बूढ़ों को, तो हमारा भी फिर यही हाल होता है। तो यही बात जो है हमें समझनी है कि अभी जो जमाना कलयुग आ गया है उसमें ये सब बातें व्याप्त हो चुकी हैं, वो सब हौच-पौच हो चुका है, कैओस होता ना कैओस, कुछ पता नहीं है ठीक क्या है गलत क्या है, ये क्या है वो, कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृपा किया हमारे ऊपर, तो कोई और रास्ता है ही नहीं कलयुग में। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम, तीन बार ये बात बोली शास्त्रों में, जो तीन बार बात बोली जाती है वो समझ लो पत्थर की लकीर है जैसे। वैसे भी आप देखते हो साधारणतया भी अगर कोई तीन बार कोई बात बोल देते हैं तो उसका बहुत ही वैल्यू होती है। और दोनों एक बात ये बोली नास्ते व नास है, और दूसरा फिर क्या कहा हरेर नाम हरेर नाम तीन बार बोला, और फिर उल्टी भी बोली नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम, केवलम का मतलब होता है इकलौता, दूसरा नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा, भगवान के पवित्र नामों के जप के अलावा, भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन के अलावा इस कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, गतिर अन्यथा, और कोई रास्ते से आप नहीं निकल सकते बाहर। इतना ज्यादा कायोस है, इतना ज्यादा यहां पे जो है उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है सब कुछ। इसीलिए हमें जो है इस नाम पवित्र नामों के जप पे बल देना है, क्योंकि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये सब अभी नष्ट हो गई हैं। कहां कुल परंपराएं, कहां रही हैं कुल परंपरा, संस्कार कहां, हमें पता ही नहीं है क्या संस्कार होते हैं। नहीं तो ये जो जीवन है ये तो संस्कारों के बीच में बंधा हुआ है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, बच्चे के आने से पहले, बच्चा अभी गर्भ में नहीं आया उससे पहले उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार, और फिर जब चली जाती है आत्मा इस संसार से तभी भी संस्कार खत्म नहीं होते, उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार दाह संस्कार, जब उसके शरीर को जलाते हैं वो भी संस्कार से जलाते हैं। बीच में विवाह संस्कार, विवाह भी एक संस्कार है, कहा जानते हैं लोग, मानते हैं विवाह को संस्कार है। आजकल तो विवाह का महत्व जो है वो इतना ही रह गया है कि बस जस्ट लिव इन, आजकल तो ये है, क्योंकि आज आप विवाह कर रहे हो कल तलाक लोगे आप, तो इस चक्कर में ही मत पड़ो जी। तो इतना ज्यादा जो है डिग्रेडेशन हो गया है संस्कारों की, तो बात संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं, मतलब क्या है संस्कारों का। जैसे एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, एक बेटा था, उसने कहा ये निशानी है मेरी पत्नी की निशानी है, उसको खूब पढ़ाया, पढ़ा लिखा के उसको डॉक्टर बनाया, फिर एक डॉक्टरनी से उसकी शादी कर दी, तो फिर घर में ही उसको क्लिनिक खोल दिया, और क्लिनिक बहुत चल निकला, क्लिनिक दोनों डॉक्टर डॉक्टरनी, तो फिर सारा घर जो है उन्होंने नर्सिंग होम बना दिया और सामने एक और घर ले लिया। तो एक दिन वो डॉक्टर ने डॉक्टर को कहती है, ए जी सुनिए, ये पिताजी है ना हमारे बिल्कुल साथ वाले कमरे में रहते हैं और रात को खांसते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाती हूं मैं, नींद टूट जाती है। इनको कहो कि हमारे तो बड़े सारे कमरे हैं, आखिरी वाले कमरे में सो जाएं, क्या है घर तो एक ही है, कोई घर से थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं हम, हमारा जैसे एक कमरा है, ये वाले कमरे को छोड़ के वो आखिरी वाले कमरे में सो जाया करें, डिस्टर्बेंस नहीं होगी कोई। वो डॉक्टर डॉक्टरनी की बात थोड़ा टाल सकता है, पिताजी के पास जाता है, वही बात कह देता है। पिताजी कहते हैं, बेटा जैसे तू रखे, जहां तू कहे, अब तो मैं तेरे ही सहारे हूं, बुढ़ा हो गया हूं अब कहां जाऊंगा, ठीक है उस कमरे में सो जाऊंगा बेटे। थोड़े दिन बीतते हैं तो डॉक्टर ने फिर कहती है, ए जी सुनिए, मैं देखती हूं पिताजी जो है ना खुश नहीं है, क्यों ना वो जो हमारा सामने वाला घर खाली पड़ा है उसमें उनको स्थापित कर दें, नौकर चाकर रख दें, अलग से उनके दोस्त वगैरह सब आएंगे कुछ भी करें, यहां मुझे लगता है एक ही कमरे में इसी घर में रहते हैं, इसमें हमारा नर्सिंग होम भी ऐसा है, सब डिस्टर्ब होते हैं शायद। तो पुत्र तो डॉक्टर ने कहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, अब डॉक्टर की चाबी डॉक्टर नहीं के पास होती है। तो जाते हैं पिताजी के पास, पिताजी कहते हैं, बेटे मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन जैसे तेरी इच्छा, तू कहता है तो मैं सामने वाले घर में रह जाता हूं। फिर थोड़े दिन बीतते हैं तो डॉक्टर ने कहती है, सुनिए मैं आपको बात बताऊं, पिताजी सारा दिन बोर होते रहते हैं, मैंने सुना है हमारे घर के पास ही एक ओल्ड एज होम खुल गया है, वृद्धाश्रम खुल गया है, उसमें उनके हान के सारे लोग होंगे, क्यों ना हम अपने पिताजी को वहीं दाखिल कर दें। वो डॉक्टर ने की आज्ञा होती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने की आज्ञा, डॉक्टर जो है पिताजी के पास जाता है, कहता है जो उसने कहा। पिताजी कहते हैं, बेटे मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होता, मैं तो बहुत खुश हूं, तुम लोगों को देखता रहता हूं, बच्चों को देखता रहता हूं, मेरा तो मन बहुत खुश है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी जैसी आज्ञा। पिताजी को जब वहां दाखिल करने जाता है, छोड़ने जाता है, तो दो धोती और दो कुर्ता भी दे देता है साथ में। पिताजी कहते हैं, ऐसा कर बेटा, एक धोती कुर्ता तू रख ले, मैं एक से गुजारा कर लूंगा। कहते पिताजी आप क्या समझ रहे हो, मैं तो दो धोती कुर्ता और ला के दूंगा आपको, कोई कमी थोड़ा है यहां पे, और एक किलोमीटर तो हमारा घर दूर नहीं है, आपकी बहू जो है रोज आपको देखने आया करेगी, आप ऐसा क्यों समझ रहे हो। नहीं बेटा, मैं जरा लंबी सोच रहा था, दूर की सोच रहा था। है? दूर की सोच रहे थे पिताजी, क्या दूर की क्या सोच रहे थे पिताजी। बेटा मैं सोच रहा था तू भी बुढ़ा होगा एक दिन, तेरा बेटा जवान होगा, वो भी तुझे ओल्ड एज होम में छोड़ने आएगा, पर पता नहीं वो जमाना कैसा हो, तुझे एक भी धोती कुर्ता दे ना दे, अपने उस वक्त के लिए रख ले बेटा। पिता का हृदय है ना, पिता तो ऐसे होते हैं, कहते बेटा जमाना कैसा आ जाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए, वृद्ध लोगों का हमें आदर करना चाहिए, और वो होएगा जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो अपने आप होएगा, क्योंकि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नामों का जप करने का मतलब है कि आप भगवान का संग कर रहे हो, और भगवान का मतलब क्या है, ऑल ऑस्पिशियस, भगवान का मतलब है हर तरह से कल्याणकारी, कोई भी उससे जुड़ जाए, कैसे भी जुड़ जाए भगवान से, चोर जुड़ जाए, उचक्का जुड़ जाए, कोई डाकू जुड़ जाए, कोई भी जुड़ जाए, वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे सूर्य होता है, सूर्य कहीं भी उसकी प्रकाश जाएगा शुद्ध करेगा, चाहे टीबी के मरीज का थूक हो, मूत्र हो, मल हो, जहां पे सूर्य की किरणें जाएंगी वो पवित्र हो जाएगा वातावरण। इसलिए कहा कृष्ण सूर्य समहा माया हय अंधकार, जहां कृष्ण ताहार नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है, और यही हमें मांगना चाहिए भगवान से, भगवान अपनी सेवा दो, माया की सेवा से छुड़ाओ। ये है असली मांग, ये है बुद्धिमत्ता की मांग, ना कि उस बुढ़िया की तरह नहीं। वो बुढ़िया ने गट्ठर सिर पे रखा हुआ था, जा रही थी, गट्ठर गिर गया, भगवान को पुकारा। अब भगवान की मर्जी है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, हो गए प्रकट। बुढ़िया कोई भक्त भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, प्रकट हो गए। हाँ मां क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? मैं तेरे सामने आ गया हूं नारायण, तू बुला रही थी, क्या चाहिए तुझे? हे नारायण भगवान, ये गट्ठर नीचे गिर गया, ऊपर रख दे मेरे सिर के, है ना हंसने वाली। साक्षात भगवान सामने हैं, क्या मांग रहे हैं? गट्ठर रख दो सिर के ऊपर। लेकिन ये कहानी हम लोगों की ही है। हम जब साक्षात राधा पास आरती के सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं, क्या मांगते हैं? हे भगवान एक मर्सिडीज और दे दो, ये बेटी की शादी कर दो, ये बेटे को सीए बना दो, इसको ये कर दो। ये क्या है? गट्ठर सिर पे रख रहे हैं दोबारा। इस तरह से गट्ठर अगर गिर रहा है तो उसको गिरने नहीं दे रहे, गट्ठर दोबारा रखो जी सिर पे। ये उन्नति नहीं है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारी उंगली जो है या हाथ जो है ये खराब हो जाए, बीमारी हो जाए इसको कुछ है, तो ये सेवा नहीं कर पाएगा ना शरीर की, है कि नहीं? मान लो फ्रैक्चर हो गया तो प्लस्तर लग जाएगा सारा, कुछ कर सकता है? ये बंद गया ना प्लस्तर इसको, तो ये क्योंकि शरीर की सेवा नहीं कर पा रहा, तो इसलिए क्यों? क्योंकि ये डिजीज्ड है, बीमारी लगी हुई है इसको, बीमार है। इसी तरह से हम भी भगवान के अंश हैं, और अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो हम बीमार हैं। इसको समझिए ध्यान से, ये है सूक्ष्म बात, ये है गहरी बात। जो लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो बीमार हैं। आप चाहो तो उनको ठीक कर सकते हो, आप डॉक्टर हो सारे, उनको दवाई दो, उनको ठीक करो। भगवान की सेवा करना जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। हम भगवान के सर्वेंट हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के नौकर हैं, भगवान के हम अंश हैं। अंश का कार्य है अंश की सेवा करना, जैसे ये हाथ का कार्य है पूरे शरीर की सेवा करना। लेकिन अगर इसको प्लस्तर लग गया तो कैसा करेगा बेचारे सेवा? इसी तरह से सब भव रोग लगा हुआ है, सबको डिजीज लगी हुई है, भव रोग कहते हैं उसे, टेक्निकली उसका नाम है भव रोग लगा हुआ है सबको। और भव रोग के कारण हम भूल गए हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, हम बन गए हैं माया के सेवक, माया के सेवक बन गए हैं, और दुलत्तियां खा रहे हैं रोज माया की, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती, फिर भी हमें समझ नहीं आती, आदत पड़ गई है। तो उस आदत को छूटने का तरीका है, जैसे यहां बताया है, कि हम विधि विधानों का पालन करें। यही है जो बताए हैं संस्कार, ये जो बातें बता रहे हैं, यही बातें बता रहे हैं यहां पर। परंपराएं जो है ना, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अधर्ममय व्यसनों से, आदतें, सारी जो बेकार की आदतें हैं, अभी जैसे 31 दिसंबर आ रहा है, क्या है? लाखों रुपया लोग खर्च करेंगे, किस लिए? शराब पीने के लिए। 5-star होटल में जाके शराब पी के नाच लेना, बस बहुत अच्छा, मैं कितना मैं कितना सुखी हूं। मैं 31 दिसंबर को 5-स्टार होटल में जाके शराब पी के नाच सकता हूं। मेरे से सफल व्यक्ति कोई है ही नहीं। ये है, इसको कहते हैं माया। ये है माया। माया का मतलब जो नहीं, इल्यूजन, भ्रम, पागलपन, जो नहीं है उसको आप समझ रहे हो वो है। कष्ट को आप जो है सुख समझ रहे हो। बताओ, शराब पीना जो है कितना कष्टमय है। शराब शुरू से लेकर आखिर तक कष्ट ही कष्ट है। पीने में कड़वी बदबू आती है, उसमें जलन होती है। आप शराब को रखो उसमें ऐसे जरा थोड़ी सी आग दो, जल पड़ती है पेट्रोल की तरह। आगे शरीर को क्या करती होगी वो, उसको पी के लोग समझते हैं आपको घर में बुलाएंगे, आइए हमारे घर में आइए, हमने आज कॉकटेल पार्टी रखी है, नाम बदल दिया उसका। ये नहीं कहते कि हम शराबी कबाबी मिले हैं, आप भी आओ हमारी शराब शराब कबाब की पार्टी में। असली बात तो ये है, लेकिन कॉकटेल डिनर, यू आर इनवाइटेड टू आवर कॉकटेल डिनर, मुर्गे की पूंछ की पार्टी में आइए। तो अंग्रेजों ने, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजियत छोड़ गए यहां पे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले अगर कोई गांव में नशेड़ी होता था ना तो सारे गांव में चर्चा होती थी, वो आ गया, वो अफीमची आ गया, वो रे अफीमची, दूर से उसको अफीमची आ गया, वो चरसिया आ गया, चरसिया दूर से कह देते थे, मतलब गांव में सारे गांव को पता होता था, ऐसा होता था। लेकिन ये अंग्रेजों ने आके दो है ना, सारे व्यसन, सिगरेट पीना, शराब पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, पैंट कमीज डालना, धोती कुर्ता जो डाला हुआ है वो तो बेचारा आदमी है, बेचारा। पंडित जी हट जाओ जरा, पंडित जी धोती कुर्ता जो डाल लिया ना, अब पंडित जी हो गए, अब जरा हट जाओ। हम देखो बाबू आ रहे हैं टाई लगा के, कंठ लंगोट लगाया हुआ है ना हमने, माला नहीं डालनी, माला डालने बेइज्जती होती है जी, माला का आप कहते हो माला डाल लो, कैसे जाएंगे ऑफिस में, कैसे जाएंगे, कैसे बातें करते हो प्रभु जी, प्रैक्टिकल बातें करा करो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, कंठ लंगोट प्रैक्टिकल है। गले में बांध लिया, फायदा क्या उसका, कुछ गला वैसे कसा जाता है, लेकिन अंग्रेज दे गए आपको, अंग्रेजियत दे गए ना, चले गए, अंग्रेजियत दे गए, बांध नहीं पर कसा रे, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर थे, उनके बेटे पक्के डॉक्टर बन गए, मतलब वो थे आरएमपी होते ना, मतलब आरएमपी सिर्फ कुछ कंपाउंडर थे, आरएमपी का सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस चलती बहुत थी, और इतनी प्रैक्टिस चली, इतनी प्रैक्टिस चली कि लड़के को एमडी करा दिया, एमबीबीएस भी नहीं, एमडी। अब जब एमडी करके आया तो डॉक्टर ने कहा, देखो बेटा मैंने बहुत मेहनत की है, कभी छुट्टी नहीं ली मैंने, थोड़े दिन मैं छुट्टियों पर जाना चाहता हूं, तू जरा मेरी क्लिनिक में बैठ, मेरी कुर्सी में बैठ, तू एमडी है अब। डॉक्टर जी बैठ गए एमडी, आरएमपी की कुर्सी पे बैठ गए। मरीज आया एक, कहता है डॉक्टर जी गला बड़ा घुटदा है, गला घुटदा है बड़ा, तुहाडे पिता जी मैनू एग्जामिनेशन रूम च लैके जांदे सी, वो एग्जामिन करदे सी, गोली देंदे सी, मैं ठीक हो जांदा सी। अच्छा, मैं बीच बीच में पंजाबी बोल रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पंजाबी तो जरा दिल्ली में चलती है ना, समझते हैं सब। अच्छा आओ जी आओ, वो उसको करता है, वो एग्जामिन करता है, देखता है कि टाई उसने बड़ी कस्सी बांधी हुई है, वो थोड़ी सी टाई ढीली कर देता है, वो ठीक हो जाता है। कहंदा है देखो आपका जो ये इलाज है ये सिर्फ है, ये टाई मत बांधा करो, ये और कोई नहीं, कुछ नहीं बीमारी आपको। कहते अच्छा, आपके पिताजी तो कितने दिनों से मेरा इलाज कर रहे थे। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। कितनी फीस, और फीस वगैरह आएगा क्या फीस, आप बस टाई जो है ना ढीली बांधा करो बस, या नहीं बांधो तो और भी अच्छा है। जब आते हैं पिताजी, उनको बताते हैं, पिताजी आपका एक केस, क्रोनिक केस, जिसको आप कितने सालों से ठीक कर रहे थे, मैंने ठीक कर दिया, खुशी खुशी बताता है। कहता है कौन सा केस, वो नाम लेता है उसका, वो मूर्ख, उसकी कमाई से तो तुझे मैंने एमडी कराया था। ऐसी टाई के ऊपर मुझे बात याद आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि असली जो चीजों को हम एक ये जमाना है, कलयुग है, लेकिन आप सब लोग बहुत साहसी हो, आप अलग हो, और आपके सबके नाम जो हैं भगवान ने अपनी खास डायरी में लिखे हुए हैं। आपको पता है इस बात का? नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सच बात है। आप सबके नाम, पर्सनल नाम भगवान ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखे हुए हैं, और आपको अपना सेलुलर फोन भी दिया हुआ है उन्होंने। आपको पता है क्या है, क्या नंबर है भगवान जी के सेलुलर फोन का? यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये सेलुलर नंबर जो है ये आप बजाते रहिए, और भगवान जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली। और लोगों को बताइए, ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, यही तो है, भगवान इतने बड़े होके भी सेलुलर नंबर कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते। नहीं तो आप देखो बड़े बड़े लोगों का क्या तरीका होता है, वो कॉल करेंगे आपको प्राइवेट नंबर, ये स्टेटस है, किसी का आपको कॉल आ गया आपके सेलुलर फोन पे, उसका नंबर नहीं आएगा, आपको उसका नंबर पता है, उस व्यक्ति को आपका नंबर पता है, लेकिन वो नहीं बताएगा अपना नंबर आपको, इसलिए एक फैसिलिटी लेके रखता है वो प्राइवेट नंबर। समझ आ गई बात? नहीं आई माता जी को? नहीं आई? जब हम फोन आता है हमारा तो उसका नंबर आ जाता है ना सेलुलर फोन पे जो फोन कर रहा है, लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं उनका फोन नंबर नहीं आता। कोई मंत्री आपको करे, कोई प्राइम मिनिस्टर करे, थोड़ा उसका फोन नंबर आपके पास आ जाएगा, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। यही तो भगवान की महानता है, यही भगवान की महानता है। भगवान के पास सब कुछ है, षडैश्वर्य पूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो ऐश्वर्य क्या है कि वो सबसे बड़े बैरागी हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो भक्तों की सेवा करते हैं, वो ये महानता है, छोटे नहीं होते उससे। भगवान जो है अर्जुन का जो रथ चला के, कोई छोटे नहीं हो गए, उनका नाम पड़ गया पार्थ सारथी, जिसके नाम पे हमारा मंदिर है, पार्थ सारथी भगवान। तो ये भगवान की महानता है कि भगवान सबसे ज्यादा बड़े हैं, सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो, लेकिन फिर भी अपना सेलुलर नंबर एक आम व्यक्ति को भी दे देंगे वो। तो ऐसे महान व्यक्ति से जुड़िए आप, और गहराई से, और लोगों को जोड़िए, और फिर देखिए समाज में सब जो आज इतना टेरर फैल रहा है, इतना कितना कैओस फैला हुआ है, मंदिर में आने के लिए भी आपको कितनी सिक्योरिटी से आना पड़ता है। अच्छा लगता है क्या? आप मंदिर में कितनी भावना से आ रहे हो, भगवान से दर्शन करने आ रहे हो, साफ सुथरे होके आ रहे हो, नहा धो के आ रहे हो आप किसी बिल्कुल जो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं वो डाले हैं, किसी को छूते भी नहीं हो कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, और यहां आते हो तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है पता नहीं उसने हाथ भी धोए हैं कि नहीं धोए टॉयलेट जाने के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, ये है कलयुग की निशानी, कलयुग का छाप, कलयुग की जो है जीत, कलयुग जीत रहा है अभी। अगर आप चाहो तो कलयुग को हरा सकते हो, अगर कृष्ण के पाले में हो जाओ या कृष्ण को अपने पाले में कर लो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपने पाले में किया। वो दुर्योधन ने सोचा कि मैं जीतूंगा क्योंकि कृष्ण क्या करेगा, ये गवाला क्या करेगा, और अर्जुन के पास सिर्फ 7 अक्षौणी सेना थी और दुर्योधन के पास 11, 4 अक्षौणी सेना का मतलब महान अंतर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने नारायणी सेना भी उसको दे दी थी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो निहत्था रहूंगा, किसी के भी पाले में रहूंगा। दुर्योधन ने कहा मैंने इसके निहत्थे का क्या करना है, मैंने कोई गाय थोड़ा चरवानी है वहां पे भैया, वहां तो लड़ाई का मामला है, क्या करेगा गवाला, तो गवाला समझता था ना उनको। अर्जुन ने कहा नहीं, कृष्ण मेरे साथ होंगे, और जीत हुई थी ना कृष्ण की। इसीलिए अगर आप कृष्ण को अपने पाले में कर लो हमेशा, और ये बात ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, हर पल की बात है, हर पल आपके सामने चॉइस होती है, चुनना होता है, कृष्ण को चुनो या माया को चुनो, कृष्ण को चुनो या माया को चुनो, और हर पल आप कृष्ण को चुनो और देखो फिर कैसे जीत होती है और कैसे समाज में भी जो है खुशहाली आती है। हर पल हमें कृष्ण को चुनना है। ठीक है, तो अभी लग रहा है कि समय हो रहा है शायद, है प्रभु जी समय हो गया? अच्छा, अभी क्वेश्चन आंसर का समय है, इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स, 1 राउंड ऑफ चैंटिंग लास्ट में है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, पूछिए पूछिए, शर्माइए नहीं, पूछिए। लीडर्स को कौन चुनता है, कौन चुनता है लीडर्स को? तो फिर तो वहां कहां फॉल्ट कहां है? जनता ने चुना ना। नहीं, आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिए बात को। 10 लोग हैं यहां पे, 10 लोग एक व्यक्ति को चुन लेते हैं कि भैया आप हमारे नेता हो, तो जो चुना उन्होंने, उन्होंने एक डाकू को चुन लिया नेता, तो चुनने वाले कम है क्या? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। भक्ति में हमें यही सीखना है कि हम अपने आप को कैसे बदलें। क्योंकि इसलिए आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो जो सरकार है वो उसके भी कानून है, उसका सूक्ष्म कानून है, ऐसा नहीं है उसका कानून नहीं है। आप देखिए ना, उसका कानून है तो आज देखो इतना टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, रोज जो है आप इतने मुर्गे काट रहे हो, आप मतलब आम जनता की बात कर रहा हूं, रोज इतने मुर्गे कट रहे हैं, रोज इतने बकरे कट रहे हैं, ये टेररिज्म नहीं है? शास्त्रों की नजरों में, भगवान की नजरों में इसको टेररिज्म बोलते हैं, ये टेररिज्म है कि आप बिना किसी वजह से एक मासूम जानवर को मार दिया, उसने कुछ कहा ही नहीं आपको, मुर्गा आपको क्या कह रहा है, आपको बकरा क्या कह रहा है बेचारा, कुछ कहा उसने आपको, आपने मार दिया उसको अपनी 2.5 इंच की जीभ की स्वाद के लिए। तो एक टेररिस्ट का ग्रुप जो है दूसरे टेररिस्ट के ग्रुप से जब लड़ता है और दोनों आपस में एक दूसरे को मारते हैं, तो सरकार खुश होती है या कुछ इंटरफेयर करती है कि क्यों आपने कत्ल कर दिया जी इतना? है, है जी? नहीं नहीं, आप ध्यान से सुनिए, एक टेररिस्ट का ग्रुप है, उन्होंने दूसरे टेररिस्ट के ग्रुप से लड़ाई की और आपस में मर गए वो, तो सरकार इसमें कुछ इंटरफेयर करेगी? सरकार तो खुश होगी, सरकार तो आज चाहती है, आज सरकार तो इतनी बड़ी खुश हो जाए अगर एक कितने 2, 3, 4, 10 कितने भी टेररिस्ट के ग्रुप है ना, एक तो टेररिस्ट का ग्रुप नहीं है, कई तरह के ग्रुप, वो आपस में सब दुश्मनी हो जाए, सब लड़ मरे आपस में, सरकार तो इतनी इतनी सारी उसकी जो हेडेक है वो खत्म हो गई। तो भगवान की भी ये हेडेक है, इसलिए जब सुनामी आता है ऐसे ये टेररिस्ट जो है मार देते हैं ऐसे लोगों को, और कई लोग हाईजैक हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, भूचाल आ गया वहां पे, अकाल पड़ गया, तो एक टेररिस्ट ने दूसरे टेररिस्ट को मार दिया, भगवान क्या करेंगे इसमें? भगवान को कष्ट तब होता है जब भक्तों पे आंच आती है, जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए जब प्रहलाद महाराज के ऊपर आंच आ रही थी, तो फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को भी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं, हमें संस्कारों को पालन करना है, हमें शास्त्रों के कानून को मानना है, वो कानून बड़ा है, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमारी जर्नी पीछे से चले आ रही है, यही तो है ना, हमें कोई बताने वाला नहीं है, इसी शरीर को हम समझ रहे हैं सब कुछ है, वो पीछे जो हमने कर्म किए हैं, पीछे जो शरीर हमने लिया है और आगे जो शरीर मिलने वाला है उसके बारे में हम भूले हुए हैं। ठीक है प्रभु जी, आपका शुभ नाम राजमुकुट, वेरी गुड, थैंक यू राजमुकुट जी, बहुत अच्छा प्रश्न था। और किसी का प्रश्न कोई? ठीक है फिर, क्योंकि अगला कार्यक्रम है। ठीक है, चैंटिंग करनी है एक राउंड या 7 लेट होगा। ठीक है, अब अनाउंसमेंट।